हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थापितं येन भूतले स्वयं श्री श्रीपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सह गणरत्नम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी
वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिकीर्तिरुषतां तमन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं व्यासशोनुमुपयामि गुरुं मुनीनां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकिः। श्रीमद्भागवत दशम स्कंध छठा अध्याय श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच नन्दः पथि वचः शौरेः न मृषा इति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पात आगम शङ्कितः श्रीशुक उवाच नन्दः पथि वचः शौरे नामृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागम शङ्कितः श्रीशुक उवाच नन्दः पथि वचः शौरे नामृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागम शङ्कितः श्रीशुक उवाच शौरे नामृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् श्रीशुक उवाच नन्दः पथि वचः शौरे नामृषेति विचिन्तयन्
उत्पादागम शङ्कितः
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नंद महाराज ने पथि घर आते हुए रास्ते में बचह शब्द शौरे वसुदेव के न नहीं मृषा निरर्थक इति इस प्रकार विचिंतयन अपने पुत्र के अशुभ के विषय में सोचकर हरिम भगवान नियंता की जगाम ग्रहण की शरणम शरण उत्पात उपद्रवों की आगम आशा से संकित भयभीत हुए। अनुवाद और तात्पर्य परम पूज्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब नंद महाराज घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने विचार किया कि वसुदेव ने जो कुछ कहा था वह झूठा या व्यर्थ नहीं हो सकता। अवश्य ही गोकुल में उत्पातों के होने का कुछ खतरा रहा होगा। ज्यों ही नंद महाराज ने अपने सुंदर पुत्र कृष्ण के लिए खतरे के विषय में सोचा, त्यों ही वे भयभीत हो उठे और उन्होंने परम नियंता के चरण कमलों में शरण ली। तात्पर्य प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जब कभी कोई संकट आ पड़ता है तो शुद्ध भक्त सदैव भगवान द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा तथा शरण के विषय में सोचता है। भगवद गीता में भी 9:33 इसी का उपदेश है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस जगत में पग पग पर संकट है, अतएव भक्त के लिए पद पद पर भगवान की शरण में जाने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं रहता। तो श्रीमद्भागवतम के 10वें स्कंद से के अनुसार भगवान का अवतार हो चुका है। अवतार लेकर गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। कल महाराज जी ने कहा नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद बाबा ने बहुत बहुत दान दिया। महामना थे, जाता हलादो महामना, बहुत विशाल मन वाले थे। और महामना का एक अर्थ है विष्णु सहस्र नाम में भगवान का एक नाम महान आया है। जिनके मन में केवल कृष्ण ही थे ऐसे महामना श्री नंद महाराज ने अपने पुत्र श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष में ब्राह्मणों को और सबको बहुत भूरी भूरी दान दिया। ये तो लीला हुई गोकुल में, परंतु मथुरा में भगवान के जन्म लेने के बाद वसुदेव जी योग माया को वापस लेकर के कंस के जेल में पहुंचे। और जिस तरह से कृष्ण को गोद में लेने से वसुदेव जी के सारे बंधन खुलते गए, पहरेदार सो गए, मथुरा के कुत्ते सो गए, सिक्योरिटी फोर्स सब सो गया, और भगवान की प्रिया भगवान सूर्य की पुत्री श्री यमुना जी ने मार्ग दिया। श्री यमुना महारानी ने मार्ग दिया भगवान को, और पुनः नंद महाराज उसी मार्ग से भगवती योग माया को जब अपने गोद में लिए वापस लौटने लगे तो सब प्रकार के बंधन और ताले, भागवत में वर्णन है उस तरह से ताले और किवाड़ खुलते थे जिस प्रकार से भगवान भास्कर के, भगवान सूर्य के उदय होने के पहले ही अंधेरा हट जाता है। उस तरह से सभी ताले और सभी दरवाजे, कुछ आचार्यों का मत है कि 7 दरवाजे के जेल में, जिस जेल में वसुदेव जी रहते थे उसमें 7 दरवाजे और सभी दरवाजे में ताला। महाराज जी एक बार कह रहे थे कि बगल में ही पूरे भारतवर्ष का प्रसिद्ध ताला का कारखाना कहाँ है, अलीगढ़ में है। स्पेशल ताला मंगाया था क्योंकि मृत्यु को निकलने नहीं देना है। और उस अंतह जेल के भीतर श्री वसुदेव जी के लिए एक बहुत विशाल लोहे का खंभा बनाया, बहुत मोटा, और उस खंभे से बहुत मोटी जंजीर लेकर के और वसुदेव जी के पैर में बांधा बेड़ी। बहुत प्रयास था कि अपने मृत्यु को मार दिया जाए, मृत्यु न आने पाए। पूरा प्रयास किया लेकिन भगवान का जन्म हुआ, और जन्म लेते ही वसुदेव जी के जीवन में जितना भी बंधन था सभी बंधन मुक्त हो गए, और पुनः योग माया को लेकर के वापस आए। और जब योग माया का रुदन हुआ, रोने लगी वह पुत्री, तब पहरेदार जगे। देखिए एक ही भगवान की योग माया मथुरा में महामाया का काम करती है और गोकुल के लोग भी नहीं जाने। गोकुल में भी गए तो नंद महाराज के दरवाजे पर कोई सिक्योरिटी फोर्स होगा, कुछ स्वान होंगे, कुछ गोप होंगे, कुछ पहरेदार, बहुत टाइट व्यवस्था थी नंद महाराज की। परंतु वहां भी कोई नहीं समझा, तो वहां भी योग माया ने सभी ब्रजवासियों को सुला दिया। और यहां पर वही महामाया, भगवान की बहिरंगा माया प्रकृति के प्रभाव में आकर सारे मथुरा वाले सो गए। इस तरह से जब घटना हुई तो कंस के सिपाही जगे और जग करके दौड़े, क्योंकि बहुत बड़ा इनाम रखा था। तो प्रथम सूचना देगा उसको अरबों अरबों रुपए का इनाम, क्योंकि मरने का और जीने का सवाल था। तो मरता क्या नहीं, करोड़ों रुपए देने से ही जान बच जाए। अभी हम क्या करते हैं, 10-20 हजार के लिए अपना जान दे रहे हैं, और जब जान जाने लगता है तो 10-20 लाख खर्च करते हैं कि अब वो बच जाए। आप समझते ना, अभी हम जान दे रहे हैं कि कुछ धन प्राप्त हो जाए, और जब वास्तव में जान जाने लगता है तब हम 10-20 लाख नहीं 10-20 करोड़ भी खर्च करके उसको बचाना चाहते, और अभी मिला है तो उसको जाने देते हैं। तो बहुत बड़ा इनाम रखा था कंस, और इनाम प्रथम सूचना देने वाले को बहुत अधिक इनाम। बेचारा सोता नहीं था, जगता था। भयात कंस राजसूय यज्ञ में नारद जी कहते हैं कि भय से कंस भगवान को प्राप्त कर गया। भगवान को प्राप्त किया कंस भय से, बहुत भय था उसको, क्योंकि उस कंस को पता था ये भगवान विष्णु जो है ये कहीं से भी प्रकट हो सकता है। जब वो पत्थर से भी प्रकट हो सकता है, पत्थर की बात छोड़ दीजिए, अपने भक्त अपने पुत्र के नाक से भी पिता पैदा हो सकता है। सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे थे, पृथ्वी कहाँ चली गई, तो ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट हो, नाक से प्रकट हो सकता है, पत्थर से प्रकट हो सकता है, तो कहीं से भी प्रकट हो सकता है। ये बात कंस जानता था, इसलिए उसे भूख भी लगती थी और भोजन भी सामने आता था परंतु खा नहीं पाता था। कारण क्या है कि थाली से भी प्रकट हो सकता है, और बहुत सुंदर बेड था उसके पास, और नींद भी आती थी परंतु सो नहीं सकता। जब पत्थर से पैदा हो जाएगा तो बेडशीट और तकिया से भी प्रकट हो सकता है, तो यहां से भी प्रकट हो सकता है। इसलिए उसको रात में नींद नहीं और भूख लगने के बाद भी भोजन नसीब नहीं था। इतनी दुर्गति थी भगवान से द्वेष करने के कारण कंस को। गया, खबर मिली सरकार 8वां पुत्र जन्म ले लिया है, और वह तो प्रतीक्षा में था, उसको नींद नहीं थी, दौड़ा। आचार्य लोग कहते हैं मुकुट भी नहीं पहना, जैसे तैसे तलवार लिया, और पानी बरसात हो रही थी, उसमें गिरते बहराते मथुरा की गलियों में चलते हुए दौड़ते हुए, बाल कहीं और कोई श्रृंगार नहीं, कोई गहना नहीं, कोई कवच नहीं, दौड़ा। शत्रु आ गया है तो मारना है। दरवाजे, जेल के दरवाजे खुले और कंस भीतर आया, देखा देवकी के गोद में एक संतान है। बाद में ध्यान से देखा गोद माता देवकी तो विलाप करने लगी कि भैया इसको छोड़ दो, छह छह पुत्र आपने हमारे मार डाले, सातवां पुत्र तिरोहित हो गया, गायब हो गया, आठवें में ये पुत्री आई है, तो आप इस पर दया करो क्योंकि स्त्रियों पर तो क्रूर लोग भी दया करते हैं, आप एक इस मेरी पुत्री को छोड़ दो। देवकी को पता था कि ये मेरी पुत्री नहीं है, परंतु फिर भी हमारे गोद में रहेगी, बच्ची भी रहे चाहे बच्चा रहे, इस भाव से, और माता यशोदा भी एक प्रकार से मेरी बहन है, तो उनकी पुत्री मेरी ही पुत्री है, इस भाव से देवकी माता ने प्रार्थना किया भैया इसको छोड़ दो। लेकिन कंस इस भाव से उस पुत्री को अपने हाथ में लिया, ये विष्णु बहुत मायावी है और देवताओं ने ये भविष्यवाणी नहीं की थी कि आठवां पुत्र ही मारेगा, भविष्यवाणी थी अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भ, देवता भी बहुत छुपा करके बोले थे, बोल दिए होते कि आठवां पुत्र मारेगा तो तुरंत ये कहता कि ये तो देवता लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन देवताओं ने कहा इसका आठवां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। अब गर्भ में पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है, अपने हाथ में जैसे प्रत्येक वर्ष की भांति संतान को लेता था हाथ में और देवकी और वसुदेव जी के सामने उसको पटक देता था, जेल के अंदर ही वसुदेव जी जिस पत्थर पर बैठ करके स्नान करते थे उसी पत्थर पर पटकता था। कितना करुण दर्दनाक विषय है, माता पिता के सामने सोने के समान सुंदर निर्दोष बालकों को पटक करके और मार दिया जाए, और माता और पिता देखते रहें, एक एक नहीं छे छे बच्चे, आठवें संतान इस कन्या को भी पटकने का प्रयास किया, परंतु ये कन्या और बच्चे तो नीचे चले जाते थे लेकिन ये ऊपर चली गई, ऊपर गई और उन्होंने कहा किम मया हतया मंदह, अरे मूर्ख मुझे और मेरे जैसे लोगों को मारने से क्या फायदा है तुमको, जातो यम तवांतक, तुम्हारा अंत करने वाला प्रकट हो चुका है, जात जन्म ले लिया। देवी जी ने इतना कहा तो भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट होंगे यह सोच करके उसको आश्चर्य नहीं होता था, परंतु बंधुओं ये कंस भी देवी जी का बहुत बड़ा भक्त था, और जब देखा कि देवकी के गर्भ से हमारी इष्ट देव इष्ट देवी साक्षात भगवती प्रकट हुई है तो उसको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, और तुरंत बहुत सुंदर गीता का प्रवचन करने लगा। सब लोग अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, इन बच्चों को लिखा होगा कि अपने मामा के हाथ से मरेगा तो मर गए, इसमें मेरा क्या दोष है, सारा संसार कर्म का फल भोग रहा है तो ये बच्चे भी भोगे, सब कुछ लिखा हुआ है कौन कब जन्म लेगा कब मरेगा, इसलिए हे बहन जी हे जीजा जी इन बच्चों का भाग्य था भांज मामा के हाथ से मरने का, मर गए। और उसके बाद वो कहता है कि आप हमारे अपराध को क्षमा कीजिए, मान लीजिए आप कहते हैं कि तुम अपराधी हो तो मैं मान लेता हूं कि मैं अपराधी हूं, लेकिन आप तो साधु हैं ना, इसलिए हमारी प्रार्थना है क्षमा बड़न को जरूर मैं पापी हूँ, अपराधी हूँ, परंतु आप तो महान हो, आप साधु हो, आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को यही चाहिए। छोटे अपराध करते रहें और क्षमा बड़े क्षमा करते रहें। लेकिन यही बात कंस ने वसुदेव जी को कहा कि आप तो साधु हो, आप महान हो, आप श्रेष्ठ हो, इसलिए क्षमा करना साधुओं का गुण है, साधु क्षमा करते रहे, तो आप क्षमा कीजिए। और बहुत सुंदर, बहुत बड़ा गीता का उपदेश किया, न हन्यति हन्यमाने शरीरे, इस आत्मा को न तो कोई काट सकता है, नैनम छिंदन्ति शास्त्राणी इत्यादि इत्यादि श्लोक के द्वारा पूरा कहा कि आत्मा तो अमरी है और शरीर तो मरा हुआ है, इसलिए कौन किसका हंता है और कौन किसका हंतार है। आत्मा मरता नहीं है और शरीर मरा हुआ है। सुंदर गीता का उपदेश किया और उपदेश करके उसी रात को अर्जेंट अपने मंत्रिमंडल का कैबिनेट मीटिंग बुलाया। अब दूसरे स्कंध में उसके मंत्री कौन कौन थे ये सब लिखा गया है, अघासुर बकासुर चाणूर मुष्टिक सल तोसल इत्यादि जितने भी छांट करके अव्वल नंबर के पापी और असुर थे उसके मंत्रिमंडल में, सबको बुलाया और बोले अब क्या करना चाहिए, तुरंत छोड़ दिया जेल से। अरे बाप रे बाप, साक्षात भगवती जिसके गर्भ से प्रकट हुई वो देवकी कोई सामान्य स्त्री नहीं हो सकती, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। और तुरंत कहा कि खोल दो और ले जाकर घर तक पहुंचाओ। चले गए घर पे और इधर मीटिंग बुलाया, क्या करना चाहिए, मेरा शत्रु जन्म ले लिया है और साक्षात हमारी इष्ट देवी भगवती ने ये कहा। लेकिन देवी जी ने भी इतना ट्रिक से कहा, उनको तो पता था कि लड़का कहाँ है, लेकिन देवी जी ने भी ये नहीं बताया कि आपको मारने वाला गोकुल में पहुंच गया है। देवी जी ने यही कहा कि आपको मारने वाला जातो यम कहीं जन्म ले लिया है, इसलिए व्यर्थ आगे बच्चों की हत्या मत करो। इस तरह से देवी जी ने कहा। तो क्या देवी जी को पता नहीं था कि कहाँ है, जहां वो जहां से वो आई है वो तो वहीं है। देवी जी को सब पता है लेकिन फिर भी स्पष्ट नहीं कहा। कंस ने जब ये प्रस्ताव रखा तो सारे मंत्री लोग कहने लगे, सरकार इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है, निर्दशांश्च दशांश्च, अभी कुछ ही दिन पहले आपका शत्रु जन्म लिया होगा ना, तो बहुत होगा तो 10 दिन के नीचे ही होगा अथवा 10 दिन का ऊपर हो सकता है, तो मान लीजिए 1 महीना। तो 1 महीने के नीचे जितने भी ब्रज में और आसपास में बच्चे हैं उन सबको मार दिया जाए तो आपका शत्रु भी मर जाएगा। और ये प्रस्ताव जब मंत्रिमंडल में आया तो सब लोग ताली बजाने लगे, वाह वाह वाह, क्या दिमाग लड़ाया है, जेल में पैदा होना था वो शत्रु भाग गया और अब आसपास में कहीं जन्म लिया होगा तो 10 दिन के कम या 10 दिन से अधिक जितने बच्चे हैं उनका वध कर दिया जाए, तो उसमें अपना काल भी, अपने मृत्यु, शत्रु भी मर जाएगा। तो कंस बंधुओं बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था, शासक था, उसने कहा यदि जीवित अवस्था में किसी माँ के गोद से छीनकर बच्चे को मार दिया जाए तो ये बहुत बड़ा जन आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा, तो कोई ऐसा उपाय किया जाए कि आंदोलन भी जनता न करे, और नहीं तो किसी के बच्चे को मारा जाएगा तो 10-20 लोग खड़े होकर के क्या कहेंगे, जिंदाबाद, क्या कहेंगे। तो आंदोलन भी न हो और अपना शत्रु भी मर जाए, ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए। एक बहुत बड़ा आयोग बना, कमीशन, पूतना खड़ी हो गई। उसने कहा, सरकार हमारे पास इतना सुंदर तरकीब है, इतनी सुंदर कला है और रूप बनाने की भी, कि मैं किसी के गोद से बच्चे को ले सकती हूं और मारना नहीं पड़ेगा। हमारे पास इतना मारक अस्त्र है, शस्त्र है, हथियार है, कि केवल बच्चे के ओठ से स्पर्श हो जाए और बच्चा मर जाए। पूतना के स्तन में जो जहर था उसको पीने की जरूरत नहीं थी, केवल ओठ से, स्किन से, चमड़े से स्पर्श हुआ और मृत्यु निश्चित। इतना भयंकर जहर लेकर के गई, तैयार हो गई, और तुरंत जिस जैसे ही ये मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ, उसी समय वसुदेव जी को ये खबर मिल गया कि नंद बाबा के ब्रज में कंस का कोई असुर जाएगा और बच्चों को मारना है। इधर नंद बाबा, कल के प्रसंग में आप सुने होंगे कि किस तरह से वार्षिक कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए कंस के पास आए, क्योंकि नंद बाबा और वसुदेव जी दोनों भाई हैं, पिता एक ही हैं सूरसेन, परंतु मां दो। एक वैश्य की पुत्री होने के कारण नंद बाबा, नंद महाराज वैश्य हो गए, और क्षत्रिय पत्नी होने के कारण वसुदेव जी क्षत्रिय हो गए। तो दोनों भाई भाई हैं, इसलिए वसुदेव से यदि बैर करता है तो उसी नाते, उसी संबंध से हमसे भी बैर कर सकता है, और हमारे पास इतना सुंदर पुत्र हुआ है तो कहीं वसुदेव जी के संबंध से हमारे पुत्रों पर भी कोई आफत ना आ जाए। और इसकी सूचना भी कंस को ना हो, इसलिए कंस के कोई कर्मचारी आए, महाराज जी कल तहसीलदार कह रहे थे जो टैक्स लेते हैं, उसका कोई आदमी ना आ जाए, उसके पहले ही हमको जाकर टैक्स दे देना चाहिए। नंद बाबा मथुरा गए कंस के पास। नंद बाबा का टैक्स क्या था? पैसा नहीं देते थे नंद बाबा, और राजा जितने भी छोटे छोटे थे वो पैसा देते थे, कोई अन्न देता था, परंतु नंद बाबा क्या टैक्स में देते थे? क्या था? कोई खेती था नहीं, कोई खेत नहीं था, कोई फैक्ट्री नहीं था, और कोई व्यवसाय नहीं था, गायें थी, और गायें भी 2-400 नहीं है, कितनी गाय हैं? एक भाई के 9 लाख गाय, और नंद बाबा कितने भाई हैं? 9 भाई। एक बार किसी ने ब्रज में हमसे प्रश्न किया, महाराज तो नंदगांव से वृंदावन भगवान रोज जाते हैं गाय चराने के लिए। तो मैं उससे कहा कि एक भाई के 9 लाख गाय, और इस तरह से 9 भाई हैं, एक घर में इतनी गाय हैं, और पूरे महावन में और नंदगांव में कितनी गाय हैं, उन गायों को खड़ा किया जाए तो कम से कम 60 किलोमीटर दूरी चाहिए। 60-70 किलोमीटर की दूरी तो केवल गायों को खड़ा होने के लिए चाहिए, चरने के लिए तो और चाहिए। तो क्या आश्चर्य है इस, प्रतिदिन ठाकुर जी नंदगांव से वृंदावन आते हैं, और वृंदावन से गोवर्धन की तलहटी में लीला करते हैं और पुनः शाम के समय नंद खिरक में गायों को रख करके और नंद गांव में नंद महल में विश्राम करते हैं। तो इस प्रकार से नंद बाबा जब आते थे टैक्स देने के लिए जिस दिन, उस दिन पूरे मथुरा के लोग जान जाते थे कि आज नंद बाबा आए हैं। इतने विशाल मात्रा में सैकड़ों गाड़ियों पर, बैलगाड़ियों पर दही, सैकड़ों गाड़ियों पर मक्खन, सैकड़ों गाड़ियों पर दूध लेकर के आते थे और कंस कितना खाएगा या उसके कर्मचारी, इसलिए पूरे मथुरा में डेयरी और खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी उसको। उस दिन पूरा मथुरा जान जाता था कि आज नंद बाबा का टैक्स आ गया, इतनी विशाल मात्रा में पूरे मथुरा शहर को कुछ भी दूध दही घी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए श्री वसुदेव जी भी जान गए कि इतना दूध दही का मेला लगा है तो निश्चित रूप से हमारे भाई नंद महाराज का आगमन हुआ है, अन्यथा उनको कौन सूचना देता कि नंद बाबा है। लेकिन इस प्रकार से दूध दही का भंडार मथुरा में बहता हुआ देख करके नंद बाबा वसुदेव जी समझ गए हमारे भाई का आगमन हो गया है, इसलिए पूरा मथुरा दूध दही से भर गया है। टैक्स दिया और टैक्स दे करके बैलगाड़ी उतना सिटी में जा नहीं सकता था, सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों बैल, इसलिए नंद बाबा सिटी के बाहर ही किसी पार्क में, किसी उपवन में, छोटे मोटे वन में उन गाड़ियों को पार्क करते थे, बैल चरते थे और वहां से कंस के सिपाही और गोप ग्वाल मिल करके और उन दूध दही को लाकर कंस के पास रखते। इस तरह की लीला हुई और जैसे ही पांचवें दिन की यह घटना है तो नंद बाबा प्राय रुक जाते थे, शाम का समय हो गया था और वसुदेव जी उनसे मिलने के लिए चले। वसुदेव जी को पता हो गया कि हमारे भाई नंद महाराज आए हैं तो उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि वसुदेव जी के मन में कोई दुख नहीं था। वसुदेव जी बहुत प्रसन्न है कि हमारा पुत्र सुरक्षित है और उस सुरक्षा के लिए बहुत प्रश्न किए वसुदेव जी ने, कल महाराज जी ने इसकी चर्चा की है। वसुदेव जी ने बहुत प्रश्न किया कि आपके राज्य में पूरी गायों को चरने के लिए घास और जल की व्यवस्था तो है ना, नंद महाराज। वसुदेव जी ने प्रश्न किया, नंद महाराज सुने और नंद महाराज ने जो कहा बहुत दुख व्यक्त किया, क्योंकि एक भाई के साथ भाई की घटना है और कंस जैसे क्रूर व्यक्ति के जेल में श्री वसुदेव जी बंद हैं। तो नंद महाराज बहुत दुख प्रकट किए कि भाई आपको, आपके छः छः पुत्र को कंस ने मार डाला और आठवें में एक पुत्री हुई, सातवां गर्भ उड़ गया, आठवें गर्भ में एक पुत्री हुई, उसको भी, वह भी आकाश में दिवंगत हो गई। तो बहुत दुख की बात है, लेकिन आप चिंता न करें। कल का श्लोक महाराज जी ने जो लिया था वो ये था कि आप चिंता मत कीजिए, अदृष्ट बहुत बलवान है। नूनम यदृष्ट निष्ठ अयम, यह जो अदृष्ट में स्थित है सबका प्रारब्ध। अदृष्ट इसलिए कहते हैं कि हमारा कर्म फल अगले क्षण क्या आने वाला है वो दृष्ट नहीं, किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। तो अदृष्ट परमो जनह सब लोग सारे मनुष्य सारे जन्म मृत्यु में पड़े हुए लोग अदृष्ट के बस में हैं, अदृष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए आप चिंता न करें। प्रत्येक कर्म का फल कुछ न कुछ होता है और व्यक्ति को पता नहीं होता है। तो फिर अदृष्ट जो है किसी को छुड़ाता है और बिछड़े हुए को मिलाता है। वसुदेव जी के नंद महाराज के कहने का अर्थ है कि एक समय आएगा जब आपके छः छः पुत्र जो मर गए हैं वो फिर से प्राप्त होंगे, और ऐसा भी समय आएगा कि आठवां पुत्र जो आप गोकुल पहुंचाए हैं वह भी 11 वर्ष के बाद पुनः आपसे मिलेगा, क्योंकि अदृष्ट है और इसको कोई देख नहीं रहा है। तो अदृष्ट का काम यही है, मिलते हुए को भी अलग करता है और अलग को भी मिला देता है। वसुदेव जी बहुत प्रसन्न, नंद महाराज इस तरह से सांत्वना दे रहे थे और भी सांत्वना दे सकते थे। नंद महाराज बहुत दिन के बाद मिले हैं तो वसुदेव जी को कम से कम आधा घंटा तो समझाते हैं कि चिंता मत कीजिए, सबका अपना अपना कर्म फल है और सब लोग भोग रहे हैं, अवश्य मैं वो भोक्तव्यम। इसलिए भगवान के विषय में कर्म फल के विषय में कोई नहीं जानता है कब क्या होने वाला है, थोड़ा लंबा चौड़ा प्रवचन करते, परंतु इस तरह से वसुदेव जी ने जब दो श्लोक केवल सुना तो तुरंत वसुदेव जी कहने लगे। यहां पर यदि कोई कथा का विराम होता तो सुत गोस्वामी कहते या सुखदेव गोस्वामी कहते, परंतु कोई विराम नहीं है। बात कहते कहते ही दो श्लोक अभी नंद महाराज ने कहा और इतना श्लोक सुनते ही वसुदेव जी के मन में, चूंकि इनको पता था कि कंस का क्या दुष्चक्र है, क्या कुचक्र इसके दिमाग में चल रहा है, असुर जा रहे हैं, ये बात पता था। तो वसुदेव जी कहने लगे। इसके पहले वसुदेव जी कहते हैं कि अपने प्रिय का मिलना बड़ा दुर्लभ है संसार में। नंद महाराज ऐसा होता है कि हम जिससे नहीं मिलना चाहते हैं वो बहुत अधिक मिलता है, और हम जिससे मिलना चाहते हैं वो बहुत कम मिलता है। तो प्रिय का दर्शन बहुत दुर्लभ है। तो एक प्रश्न होता है कि प्रिय का दर्शन दुर्लभ है, वसुदेव जी कहते हैं तो कहना चाहिए कि आप कुछ समय और रहिए और हमें सांत्वना दीजिए या समझाइए। परंतु वसुदेव जी ने कहा नहीं नहीं, प्रिय का मिलना बहुत दुर्लभ है, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है आप मिले, लेकिन अब आप शीघ्र यहां से गोकुल जाइए। तो क्या कहते हैं, करो वै वार्षिकम दत्तम। नंद महाराज आपने वार्षिक कर दे दिया, राज्य राजा कंस को आपने वार्षिक कर दे दिया और दृष्टा वयम च, और हमारा आपका मिलन भी हो गया, हम आप मिल भी लिए दोनों भाई, लेकिन अब मेरा निवेदन है कि नेह स्थेयम बहुतिथम, आपको बहुत समय तक यहां रहना नहीं चाहिए, क्योंकि संति उत्पाताश्च गोकुले। संस्कृत का एक नियम है, वर्तमान सामीप्य वर्तमानवत, अभी घटना हुई नहीं है, असुर गए नहीं हैं, चल रहे हैं, परंतु यहां पर वसुदेव जी कहते हैं कि गोकुल में उत्पात हो रहा है। भवती या संति या अस्ति या बभुआ नहीं कहे, उत्पात होगा या हो गया है ऐसा नहीं कह रहे हैं, हो रहा है उत्पात उत्पात। इसलिए नहीं हम इस मथुरा में बहुत इथम न स्थेयम, बहुत समय तक आपको नहीं रहना चाहिए, अब आप शीघ्र जाइए, क्योंकि आप गोकुल के ब्रज के राजा हैं और राजा के बिना प्रजा की और ब्रजवासियों की रक्षा नहीं हो सकती है, आपको शीघ्र यहां से चले जाना चाहिए। तो वसुदेव जी दुखी नहीं है, परंतु भगवान की अपने पुत्र की रक्षा की बहुत बड़ी चिंता है। नंद महाराज को जल्दी क्यों भेज रहे हैं? इसलिए भेज रहे हैं कि इन्हीं के पास 12 बजे रात को मैंने अपना पुत्र पहुंचा दिया है और असुर कंस इस तरह से प्लान किया है बच्चों को मारने का, तो ब्रजराज रहेंगे, ब्रज के राजा यदि ब्रज में रहेंगे तो अपने राज्य की सुरक्षा करेंगे, और ब्रजराज यहां हो गए तो फिर ब्रज की सुरक्षा नहीं हो सकती है, और इन्हीं के ब्रज में, इन्हीं के घर में मेरा पुत्र है, उस पर भी खतरा हो सकता है। इसलिए अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए वसुदेव जी कहते हैं कि यह इस मथुरा में बहुत इथम न स्थेयम, बहुत समय तक आपको अब रुकना नहीं चाहिए, जल्दी आप जाइए। और वसुदेव जी का इतना कहना था कि तुरंत नंद बाबा ने गोप ग्वालों को आदेश दिया कि तत्काल बैलों को जोतो बैलगाड़ी में, और बिल्कुल सुबह होते ही, प्रातःकाल होते ही नंद बाबा मथुरा गोकुल की तरफ चले, क्योंकि इधर भगवान के दो पिता हैं। वसुदेव जी ये समझते हैं कि नंद बाबा जाएंगे तो मेरे पुत्र की रक्षा होगी, और इधर नंद बाबा सोच रहे हैं कि गोकुल में उत्पात हो गया और कहीं मेरे सुंदर श्याम सुंदर लाला का कोई अनिष्ट हो गया, क्योंकि परवश होकर के नंद बाबा मथुरा में टैक्स देने आए हैं। शरीर तो मथुरा की तरफ है लेकिन मन तो अपने घर में जो प्रकट लाला है, परम मनोहर श्याम सुंदर में ही मन लगा है। ऐसे पुत्र में लगा हुआ मन जब वसुदेव जी के मुख से सुना कि गोकुल में उत्पात हो रहा है, तो नंद बाबा के मन में आया, नंद बाबा ने विचार किया कि निश्चित रूप से वसुदेव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, क्योंकि नंद बाबा को पता है कि वसुदेव जी का जब जन्म हुआ तो उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी की थी कि यह बालक कभी झूठ नहीं बोल सकता है। तो नंद बाबा यह मानते हैं कि वसुदेव जी कोई बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, और ये देख रहे हैं यहीं से कि गोकुल में उत्पात हो रहा है। परंतु सत्य क्या था? सत्य ये था कि नंद बाबा वसुदेव जी कोई ज्योतिषी नहीं है, वसुदेव जी को गुप्तचरों के द्वारा सब पता है कि कंस क्या क्या प्लानिंग कर रहा है, सारा प्लानिंग पता है, उनको पता है, इसलिए भेज रहे हैं आप जल्दी जाइए। नंद वसुदेव जी को यह भी पता नहीं है कि पूतना जा रही है, लेकिन कोई ना कोई असुर जाएगा ये पता है, इसलिए आप जाइए। और वसुदेव जी की बात को नंद बाबा सुने और तुरंत उन्हें कृष्ण की याद आई और उन्होंने कहा कि जल्दी करो, अब गोकुल वापस लौटना है। भगवान के दो पिता हैं और दोनों में वात्सल्य भाव है। इधर वसुदेव जी में वात्सल्य भाव के कारण कह रहे हैं कि आप जल्दी जाइए, और इधर नंद बाबा इतना जल्दी इसलिए चल दिए कि हमें कृष्ण की रक्षा करनी। इसमें हरीश्वरी जी कहते हैं कि यद्यपि वसुदेव जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं और इनको पता है कि हमारे पास जो बालक जन्म लिया वो कोई सामान्य बालक नहीं, क्योंकि भगवान वसुदेव जी के सामने चतुर्भुज रूप में जन्म लिए और अपने तीन जन्मों की कथा भगवान ने वसुदेव जी को बताया, कैसे तुम प्रिश्नी और सुतपा थे और कश्यप और अदिति थे, वसुदेव और देवकी बने हो, ये सारी कथा भगवान ने सुनाया। वसुदेव जी को पता है कि ये हमारा जो पुत्र है वो सामान्य बालक नहीं है, वो जगत पिता है और भगवान है, और ये भी जानते हैं कि दुष्टों का विनाश करने के लिए ही अवतार हुआ है उसका, ये भी जानते हैं कि ये साक्षात लक्ष्मी के पति हैं, वसुदेव जी इतना ज्ञानी है भगवान के विषय में, परंतु इतना ज्ञान होते हुए भी हरिश्री जी कहते हैं सत्य है, कितना भी बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हो परंतु ममता के आगे सारा ज्ञान ध्वस्त हो जाता है। ममता हो तो ममता ही सर्वश्रेष्ठ हो जाती है और ज्ञान तुच्छ हो जाता है। महाराज जी एक कुछ दृष्टांत सुनाते हैं तो कहते हैं कोई ब्राह्मण देवता बड़े विद्वान थे, मंच पर बैठकर बहुत लोगों के बीच में कथा कहते थे और तब तक उनके लड़के का लड़का आया और लड़के का लड़का आकर के कान में धीरे से कहा, बाबा गृहे तैलम नास्ति, बाबा घर में तेल नहीं है। तब तक पंडित जी का आधा श्लोक भूल गया और तब तक बच्चे ने कहा लवणम अपि नास्ति, नमक भी नहीं है, तब तक तो पूरा श्लोक भूल गया उनका। तो मेरे घर में नहीं है तो भोजन प्रवचन करके उसके बाद में प्रसाद क्या पाऊंगा, अब इस बात की चिंता हो गई, सारा श्लोक और सारा ज्ञान भूल गया, ये मेरा नाती है और नमक नहीं है तेल नहीं है, इस प्रकार की चिंता उनको हो गई। वसुदेव जी को बंधुओं सब कुछ ज्ञान है, ये भगवान है, जगतपति है, असुरों का खल संयमना अवतार है, लक्ष्मीपति है, भगवान है, फिर भी ये मेरे पुत्र हैं, इसलिए इनकी रक्षा होनी चाहिए। ये ममता प्रबल हो गया और इस प्रबल ममता के कारण वसुदेव जी नंद महाराज को कहते हैं आप शीघ्र जाइए, आप बहुत समय तक यहाँ मत रहिए क्योंकि गोकुल में उत्पात हो रहा है। अनोभिरनडुयुक्तैस्तमनुज्ञाप, बहुत जल्दी जल्दी बैलों को नंद महाराज बैलगाड़ी में जोते और वसुदेव जी से आमंत्रणा लेकर उनको उनका आलिंगन करके उनका हृदय से मिल करके और इस तरह से नंद बाबा गोकुल की तरफ बहुत जल्दी जल्दी प्रस्थान करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नंद बाबा की मानसिकता क्या है, जब वसुदेव जी के मुख से नंद बाबा ने सुना कि गोकुल में उत्पात हो रहा है तो बहुत जल्दी बैलगाड़ी से दौड़ करके तो पार जा नहीं सकते थे गोकुल में, तब उस समय नंद महाराज के मन में क्या भाव हुआ, इस भाव का वर्णन इस श्लोक में बताया जा रहा है। पथी, पथी का अर्थ होता है मथुरा से गोकुल वापस आने के पथ में वापस आ रहे हैं, तो उस पथ में नंद महाराज सौरिह बचव सूरसेन, महाराज वसुदेव जी का वचन की बाणी मृषा न, कभी भी असत्य नहीं हो सकता है, प्रभुपाद जी अर्थ करते हैं निरर्थक नहीं हो सकता है, जरूर उसका कुछ न कुछ अर्थ है। क्योंकि इस तरह से मैं आपको निवेदन किया कि वसुदेव नंद महाराज यही सोच रहे हैं कि वसुदेव जी कोई बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, भविष्य की बात जानते हैं, इसलिए वो यहीं से देख रहे हैं, जैसे ज्योतिषी लोग भविष्य की बात देखते हैं। तो नंद महाराज ये सोच रहे थे कि हमारा जो भाई है बहुत बड़ा ज्योतिषी है और वो यहीं से देख रहा है कि हमारे गोकुल में उत्पात हो रहा है, परंतु ये बात सत्य नहीं थी। सब मीटिंग के विषय में कंस ने जो मीटिंग किया था वो सारा मीटिंग पता था कि असुर को भेजने वाला है, और इसलिए वसुदेव जी की बात को सुन करके नंद महाराज विचार करने लगे मृषा न, वसुदेव की बात कभी असत्य नहीं हो सकती है, इस प्रकार से विचिंतयन विशेष रूप से चिंतित हो गए, बहुत चिंतित हो गए कि गोकुल में उत्पात होने का अर्थ यह है कि गोकुल पूरे गोकुल के बीच में जो गोकुल के अधिपति हैं, भगवान हैं, उनमें मन लगा है, अपने पुत्र में। और तुरंत ध्यान गया नंद महाराज का कि कहीं हमारे पुत्र का कोई अनिष्ट ना हो जाए। तो इस प्रकार से झूठा नहीं हो सकता है, असत्य नहीं हो सकता है वसुदेव जी की बात। इस प्रकार से चिंता करते हुए श्री नंद महाराज हरिम जगाम शरणम, भगवान श्री हरि के शरण में गए। भगवान श्री हरि के शरण में गए क्योंकि उत्पात आगम शंकित, उत्पात के आगमन की शंका से, भय से नंद महाराज को लगा कि हमारे गोकुल में उत्पात हो रहा है और तत्काल तो मैं पहुंच नहीं सकता हूं, मेरे साथ दो 500 गोप भी साथ में हैं, तो अब क्या करना चाहिए, गोकुल की रक्षा का क्या उपाय। तो बंधुओं, यहां पर नंद महाराज एक बहुत बड़ा वैष्णव का गुण, एक भक्त का क्या स्वभाव होता है, इसका वर्णन इस श्लोक में आया है। तुरंत वहीं से आप विचार कीजिए, बहुत तेज सवारी नहीं है और मथुरा से गोकुल की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है महावन आज भी। तो 15 किलोमीटर की दूरी बैलगाड़ी से तय करना है तो जाने में समय लगेगा, लेकिन अब तत्काल विपत्ति की सूचना जब प्राप्त हुई नंद महाराज को तो वे क्या किए, हरिम जगाम शरणम, वहीं से भगवान श्री हरि जो भक्तों के दुख का हरण करते हैं, सर्व दुख हरे, चैतन्य महाप्रभु हरि शब्द का अर्थ करते हैं, हरिर अनेक अर्थ दुई मुख्यतम, सर्व पाप हरे प्रेम हरे दिया मन। जो भक्तों के भक्त शरणागत, भक्तों के भय और दुख को समाप्त करने वाली करने वाले भगवान श्री हरि हैं, वहीं से मन ही मन अपने इष्ट देव भगवान नारायण के शरण में गए। हरिम जगाम शरणम, श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं यहां भक्त का एक बहुत बड़ा सुंदर स्वभाव है, जब कभी भी उसके जीवन में संकट आता है, कोई दुख आता है, तो भक्त का एक स्वभाव है कि वह तुरंत भगवान की शरण में जाता है। और यहां पर उस समय भगवान के जो नंद महाराज के इष्ट देव हैं, जो पूजित श्री विग्रह हैं, वो तो गोकुल में हैं और नंद महाराज मथुरा में हैं, तो तत्काल वहां कैसे गए, बोले तत्काल नहीं जा सकते हैं, मनसा, मन से, मन ही मन अपने प्रभु के चरणों में, इष्ट देव नारायण के चरणों में, भगवान के चरणों में, श्री हरि के चरणों में नंद महाराज प्रणाम किए, शरणागत हुए। बंधुओं, उसी तरह से आज यदि हमें भगवान श्री हरि के चरण में जाना हो, तो अभी तो हम साक्षात हरि चरण में बैठे हैं, राधा गिरधारी के चरण में, परंतु मान लीजिए रोड पर कोई संकट, ट्रेन में कोई संकट आ जाए, तो वहां पर क्या करेंगे। तो हमारे आचार्य और शास्त्र कहता है कि कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान की शरण में जाइए या भगवान के नाम के शरण में जाइए तो तत्काल भगवान मंदिर छोड़कर आपके पास पहुंच जाएंगे, आपकी रक्षा करने के लिए वहां पहुंचेंगे। क्योंकि नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। यहां भी आप पर कोई संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, भगवान गीता में कहते हैं आर्त भक्त मेरे शरण में आता है, माम प्रपद्यंत। चार प्रकार के सुकृतिशाली जीव जो होते हैं वो मेरी शरण में आते हैं, उसमें एक आर्त है। और संसार के सब लोग आर्त हैं, दुखी है, कोई ना कोई भय है, शंका। कोई ऐसा नहीं है संसार में जिसको भय ना हो। हम यहां बैठे हैं, अपने हृदय पर हाथ रख के सही सही देखें तो किसी का हृदय ऐसा नहीं है जो भय ग्रस्त नहीं है। सबके अंदर भय, अनेक प्रकार का भय है, दैहिक भय है, दैविक भय है, मानसिक भय है, परिजनों से भय है, यहाँ तक कि संसार का सबसे सुंदर संबंध पति पत्नी का होता है, वहाँ भी भय है, पिता पुत्र में भी भय है। प्रभुपाद जी कहते हैं कुत्तों को भी भय है, यहाँ तक कि एक चिड़िया भी एक दाना चुगती है तो एक दाना मुंह में लेकर तुरंत पीछे देखती है कि कोई आ तो नहीं रहा है। सारे संसार के लोग भयग्रस्त हैं। और नंद महाराज यहाँ पर एक बहुत बड़ा उपदेश दे रहे हैं अपने आचरण के द्वारा कि जीवन में कभी भी भय आए तो भगवान के शरण में जाना चाहिए, और भगवान की शरण में पहले ही चले गए तो भय आएगा ही नहीं। ये भगवान के शरण की एक विशेषता है। तो उस समय याद करनी चाहिए, भजौ हूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। जिनका चरण अभय है, जिनके चरणों में कोई भय नहीं होता है, ऐसे भगवान के चरणों का आश्रय लो, उनका भजन करो। बंधुओं, मैं कह रहा था कि भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। हमारे आर्त भक्तों में एक गजेंद्र का नाम आता है, आप सुने होंगे। उस पानी में बेचारे को कोई मंदिर नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी। 1000 वर्ष तक लगातार युद्ध चला। समा सहस्रम बेगमन महीपते सप्राणयो चित्रम अमन सतास मरा। यहाँ तक कि 1000 वर्ष तक लगातार बिना खाए पिए उस मगर में, ग्राह में और गजेंद्र में युद्ध चला। देवता भी आश्चर्य में होकर देखने के लिए आए, परंतु कोई देवता उनकी सहायता के लिए नहीं आया। तत्रा खिला मर्मयो हरिरा विरास। अखिल देवमय 33 करोड़ देवता देख रहे थे उस युद्ध में, उस युद्ध को, लेकिन कोई भी बचाने के लिए नहीं आया। तब जो अखिल देवमय हैं, अखिल अमरमय, ऐसे भगवान श्री हरि वहां पर प्रकट हुए, तो गजेंद्र ने क्या किया? कोई मंदिर नहीं था, क्योंकि सब जगह आपको मंदिर नहीं मिलेगा। मंदिर तो मंदिर में आएंगे, ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे तो कोई भय नहीं, लेकिन आप कहीं भी रहें, भगवान में जितनी शक्ति है उनके नाम में भी उतनी ही शक्ति है। निज सर्व शक्तिस्तत्रार्पितः। आज विश्व क्या है, हरि नाम, भगवान के नाम में भी उतनी ही शक्ति है जितना भगवान में है। इसलिए आप चाहते हैं कि सर्वत्र भगवान हमारे साथ रहें, तो सर्वदा भगवान के पवित्र दिव्य नामों का स्मरण करें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्रीजीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी लगभग इस श्लोक पर एक ही बात कहते हैं, और वे अर्थ करते हैं कि वास्तव में अपने इष्ट देव और भगवान और किसी का चिंतन नंद महाराज ने नहीं किया। जब वो सुने कि गोकुल में उत्पात होने वाला है या हो रहा है, संति वर्तमान काल में होता है, हो रहा है, आप यहाँ हैं और गोकुल में उत्पात हो रहा है, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार से कहा, तो उस समय नंद बाबा को कोई अपना इष्ट देव और कोई याद नहीं आया, हरी याद आए। किसका चिंतन करने लगे? बोले हरिम विचिंतयन। पहला अर्थ था कि हरिम शरणम जगाम, श्री हरि के शरण में गए, वहीं से भगवान का शरणागत हुए। उन्होंने प्रणाम किया, हे हरि, हमारे पुत्र की और हमारे ब्रजवासियों की गायों की रक्षा करना। परंतु भगवान नंद महाराज वास्तव में जिस समय मथुरा आए थे, उस समय उनके मन में न तो गोप थे, न ब्रज था, न कोई था, केवल परम मनोहर हरि का अर्थ होता है जो हर ले, तो उनके मन में तो केवल अपना लाला, मन में केवल कृष्ण थे, ऐसे लाला का विचिंतन, विशेष रूप से चिंतन उनको होने लगा कि कहीं कृष्ण का कोई अनिष्ट न हो जाए। और इस प्रकार से कृष्ण का चिंतन करते हुए उनके लीलाओं का, उनके स्वरूप का और उनके रक्षा का, बंधुओं यही ब्रज का विशेष भाव है कि सारा जगत भगवान से रक्षा की प्रार्थना करता है, परंतु ब्रजवासियों का एक भाव है वो अपनी रक्षा के लिए कभी कृष्ण को नहीं बुलाते हैं। कृष्ण पर कोई संकट न आ जाए इसको प्रेम कहते हैं, कृष्ण पर कोई विपत्ति कोई दुख न आ जाए, और कृष्ण की रक्षा करना हमारा धर्म है, हम कृष्ण की रक्षा करेंगे, हम कृष्ण के पिता हैं, हम कृष्ण की माँ हैं, इस भाव से जो युक्त हो, ये भाव भगवान की रक्षा करना है, ये भाव केवल ब्रज में। नंद बाबा जो जल्दी जल्दी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि रास्ते पर उन्हें कोई इष्ट देव कोई भगवान की याद नहीं आई, अपने परम मनोहर हरि के विषय में विशेष चिंतन बढ़ गया उनका, विचिंतन। और इस प्रकार से कृष्ण के लीला का, भगवान का स्मरण करते हुए शरणम जगाम, शरण का अर्थ घर होता है, केवल कृष्ण के लीला का, कृष्ण का स्मरण करते हुए चिंतन करते हुए नंद बाबा ब्रज में आए, शरणम जगाम, शरण में आ गए। अब क्या चिंतन हो रहा था, पता नहीं हमारा कृष्ण कैसा है, कहाँ खेल रहा है, कैसे उस कैसे है, असुर हो रहे हैं और उत्पात हो रहा है उसमें, गोकुल में क्या चल रहा है, कहाँ असुर है, कैसे है, ये सब इन सब बातें मन में, नंद बाबा के मन में आ रही है, और मुख्य रूप से कृष्ण की रक्षा कैसे करनी है। तो जीव गोस्वामी इस पर कहते हैं कि पथिम विचिंतयन हरिम, पथ में विशेष रूप से किसका चिंतन कर रहे हैं, परम मनोहर जो अपने ही घर में भगवान पुत्र बन करके आए हैं, ऐसे अपने पुत्र कैसे हरि का, बोले सर्व भय हरम, जो समस्त प्रकार के भय को हरने वाले तो हमारे घर में हैं, ऐसे हरि का चिंतन कर रहे हैं। निज इष्ट देवे न सर्व शरणम अपि विशेषतः, भगवान श्री हरि के शरण में क्यों गए, अपने इष्ट देव का चिंतन क्यों कर रहे हैं। तो जीव गोस्वामी कहते हैं स्वसुतम स्वपुत्रम मंगलार्थम मनसा शरणम जगाम, अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए, अपने पुत्र का कल्याण हो, उसका कोई अनिष्ट न हो, उस मंगल कामना के लिए भगवान की शरण में नंद महाराज गए। यदवा न मृषाई थी हे तो, अथवा वसुदेव जी के का जो वाक्य है वो मृषा नहीं हो सकता है, इस कारण से हरिम मनोहरम स्वसुतम, निश्चित रूप से गोकुल में उत्पात हो रहा है, इसलिए अपने पुत्र को पथि विशेषतः चिंतन, रास्ते में विशेष चिंतन करते हुए, और ये चिंतन कर रहे हैं कि न जाने तत्र किम वृत्तिम अस्ति, न जाने गोकुल में क्या क्या हो रहा है, कहाँ उत्पात हो रहा है, हमारा पुत्र सुरक्षित है कि नहीं, इस भावना से युक्त होकर के इति तत्र चिंताम कुर्वन, इस प्रकार की चिंता करते हुए शरणम निज गृहम जगाम गच्छन अभूत, इस प्रकार से नंद बाबा चिंतन कर रहे हैं कि हमारा जो पुत्र है, जो हमारे मन को हरने वाला है, सर्व भय को हरण करने वाला श्री हरि है, ऐसे हमारे पुत्र का मंगल हो, हे हमारे इष्ट देव, हमारे कन्हैया पर हमारे लाला पर किसी प्रकार का असुर का प्रभाव न हो, संकट न हो, इस तरह से रास्ते भर अपने कृष्ण का अपने पुत्र का चिंतन करते हुए नंद बाबा गोकुल में आ गए। क्या वृत्ति हो रही है, इस कथा को सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक में कहते हैं, कंस के द्वारा भेजी हुई कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घाती। बंधुओं, ये जो आगे की लीला आ रही है, यह लीला बहुत ही हृदय स्पर्शी है, और इस लीला में ही परम ब्रह्म ज्ञानी विरक्त दिव्य ज्योति का स्मरण करने वाले श्री सुखदेव गोस्वामी को भी भगवान के चरणों का लोभी बना करके भगवत भक्त पद पर स्थापित किया। ब्रह्म चिंतन में लीन थे सुखदेव गोस्वामी, ज्योति अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि का भाव था उनका। ऐसे तो ओरिजिनल स्वयं साक्षात लीला सुख ही हैं, परंतु ब्रह्म ज्ञान में स्थित होकर के किस तरह से इससे भी श्रेष्ठ भगवत ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान से भी श्रेष्ठ कैसे भगवत ज्ञान है, ये लीला अपने आचरण के द्वारा भक्त दिखाते हैं। जैसे भगवान इस जगत में अवतार लेते हैं तो अपनी लीला के द्वारा अनेक प्रकार के मार्ग का, पथ का प्रदर्शन करते हैं, आदर्श प्रदर्शित करते हैं, उस तरह से भगवान के ये सुखदेव गोस्वामी साक्षात भगवान के नित्य धाम में लीला सुख हैं। और जिस समय श्रीमती राधा रानी कृष्ण के विरह में होती हैं, उस समय कृष्ण लीला का वर्णन करते हैं, और जिस समय कृष्ण राधा रानी के भाव में विरह में होते हैं, उस समय राधा रानी के पास कृष्ण के पास जाकर कृष्ण को सांत्वना देते हैं। इस तरह का दिव्य संदेश दोनों को प्रसन्न करने वाला, दोनों को संतुष्ट करने का नित्य जो पार्षद हैं भगवान के, ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी के हृदय में यदि कोई क्रांतिकारी मोड़ लाया तो ये पूतना का प्रसंग है। सुखदेव गोस्वामी ने केवल दो श्लोक सुना था, उसमें पहला श्लोक यही था, अहो बकी अंस्तन काल कूटम। बकासुर की बहन ये पूतना भी, एक तो कुल बहुत अच्छे कुल अच्छे कुल में प्रकट नहीं हुई थी, जन्म भी असुर कुल में दैत्य थे, और जो लेकर के भगवान के पास गई थी वह वस्तु भी कोई बहुत सुंदर नहीं था। जिस नियत से, जिस इच्छा से, जिस उद्देश्य से गई थी उसका उद्देश्य भी कोई अच्छा नहीं। स्तनकाल कूटम, कालकूट जहर लेकर के गई थी, किसको देने के लिए? भगवान को देने के लिए, कृष्ण को देने के लिए जहर लेकर के गई थी। और किस नियत से गई थी? जिघांसया, उसको मार देना। अपाय, केवल इच्छा ही नहीं, जाकर के अपना कंचुकी खोल करके पिलाने लगी। अपि असाध्वी, इतनी बड़ी दुष्टा थी, गई बहुत सुंदर रूप बना करके आकाश मार्ग से, कामचारिणी थी, बहुत सुंदर आगे कथा आ रही है इस विषय में। अपनी इच्छा के अनुसार सुंदर रूप बनाती थी और कोई फ्लाइट की जरूरत नहीं थी, अपने शरीर को जहां चाहे खेचरी आकाश मार्ग से चलती थी, और लैंड करने के लिए कोई एयरपोर्ट की भी जरूरत नहीं थी, जहां चाहे वो लैंड कर जाती थी। पुत्रों को, शिशुओं को, बड़े छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए बाल घाती नहीं थी। उसी में भगवान ने सोचा, मैं इस संसार में अवतार लिया हूं और ये राक्षसी चली है, पता नहीं कहाँ जाएगी, किस बच्चों को मारेगी, तो मथुरा से चली है तो आसपास ब्रज में ही जाएगी, और इस समय मैं ब्रज में हूं, मेरे रहते यदि मेरे एक भी ब्रजवासी गोप ग्वालों का बाल बांका हो गया, टूट गया, एक भी बच्चे को मार दिया, तो सब लोग यही कहेंगे, ठाकुर जी भगवान वहीं थे और पूतना का काम हो गया, इसने अपना काम बना लिया, बच्चों को मार दिया, तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, बहुत बड़ा बदनामी होगी, इसलिए भगवान सर्वस्य चाहम, भगवान तो सबके मन में है, स्मृति विस्मृति सब कुछ दिलाने वाले और देने वाले वो हैं। तो भगवान ने उसके हृदय में प्रेरणा किया, मारने तो चली हो परंतु मारो मत, मारने के बदले मरने चलो, मारने मत चलो मरने चलो। तो भगवान हृदय में प्रेरित किए और सबसे पहले गोकुल में भी गई, गोकुल में भी बहुत सारे बच्चे थे परंतु किसी घर में नहीं गई, स्वयं डायरेक्ट नंद महाराज के घर में प्रवेश कर गए। महाराज कोई सिक्योरिटी रोका नहीं, बोले क्या रोके, इतना सुंदर रूप बनाई थी कि सारी जितनी भी गोपियां थी ब्रज की, नंद बाबा के आस पड़ोसिन और जितनी भी सिक्योरिटी फोर्स थे, सब लोगों को यही लगा कि साक्षात लक्ष्मी अपने पति से मिलने आई, अब कौन रोके। कोई एक फटा चिथड़ा दुबला पतला गरीब आदमी आ जाए तो उसको सिक्योरिटी कहता है नो एंट्री, और बढ़िया आदमी आ जाए तो सैल्यूट मार करके कहेगा स्वागतम वेलकम टू। सब लोगों ने अपना अपना निर्णय, आपस में कानाफूसी हो रही थी, ये कौन है नई गोपी, आज तक तो हमने इतना सुंदर रूप ही नहीं देखा। तो सब लोगों ने निर्णय दिया ये तो लगता है कि साक्षात लक्ष्मी है, अपने पति भगवान का दर्शन करने आई। हरीश्वरी जी बहुत सुंदर भाव लिखते हैं इस पर, कहते हैं कि वास्तव में यही सज्जनों का स्वभाव है, ब्रजवासियों का हृदय इतना सुंदर है, कोई इतना खतरनाक पूतना में भी लक्ष्मी भाव देख रहे हैं, और कुछ इतने बेकार दिमाग वाले होते हैं कि बहुत अच्छे साधु में, संतों में और भगवान में भी खराब भाव देखते हैं। ये दुष्टों का लक्षण, दुष्टों का लक्षण है कि खराब अच्छे में भी खराब देखते हैं, और खराब अच्छे का लक्षण है ब्रजवासी इतने सुंदर हैं, ब्रज की गोपियां कि उतने खतरनाक पूतना में भी लक्ष्मी दर्शन कर रहे हैं कि साक्षात लक्ष्मी। बंधुओं गई मारने के लिए जा रही है और इतना स्पष्ट कहने लगी, यशोदा इतना सुंदर लाला पलने में झूल रहा है, दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं है, और इतना कहते कहते उठा ली और उठा करके तुरंत कंचुकी का कपड़ा हटाया और भगवान को दत्वा स्तनम, स्तन दे दिया। भगवान तो विचार करने लगे क्या करूं, जब जिस जिस अवतार में जाता हूं तो पहला मुठभेड़ ये, इसके पहले भी त्रेता युग में आया था तो पहला मुठभेड़ हो गया किससे, स्त्री ही मिल गई बक्सर में, जानते हैं ना आप सब ताड़का, और यहां भी आया तो पहला मुठभेड़ इससे एक स्त्री से हो गया, और शास्त्र में लिखा है स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और यह भी मां बन करके आई है, दूध पिलाने आई है, तो भगवान नेत्र बंद कर लिए। पिलाने लगी तो भगवान पीने लगे, और पीने के साथ साथ प्राण भी पीने लगे, तो मुंचाल मुंचाल मिटी प्रभासिंगे, अब भगवान तो पी रहे हैं, गोद में मथुरा से आई है, और पलने पर झूलते हुए ठाकुर जी को उठाया और उठा करके कंचुकी हटा करके स्तन पिलाने लगी कि इतना सुंदर बालक भूखा है, और पिलाने लगी तो बच्चों का स्वभाव होता है कि एक स्तन जब पीते हैं ना तो अपने हाथ से पकड़ लेते, दूसरे स्तन को पकड़ते हैं, तो भगवान भी इसी तरह से दोनों हाथ से उसके स्तन को पकड़ लिए, और धीरे धीरे जब उसके विष तो पी ही गए, और वास्तव में भगवान ने विष नहीं पिया, विस्तार से कथा आएगी आप सुनेंगे, विष पीने के लिए भगवान ने भगवान शिव को आमंत्रित किया। नेत्र बंद करने का भाव भक्त लोग देते हैं, भगवान सोच रहे हैं कि आया था मथुरा छोड़कर, कल जैसा महाराज जी बोल रहे थे कि भगवान कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर गेहात ब्रजंगत, ऐसा तो किसी अवतार में नहीं किए कि जिस माँ बाप से जन्म लिए जन्म लेते ही अलग हो गए, परंतु किस कारण से ये गोकुल में गए। तो कल महाराज जी ने बताया कि उनको दूध पीने की इच्छा थी, मथुरा में जेल में बंद हैं तो दूध नहीं मिलता, और माता यशोदा का ब्रजवासियों का, तो यहाँ पर दूध पीने आया था तो पहला दूध जहर मिल गया, तो मानो मन ही मन भगवान नेत्र बंद करके कहते हैं कि हे शिव जी ये आपका भोजन है और आपको पीने का अभ्यास, तो आप ये पीजिए। मानो मन ही मन भगवान शिव जी को बुला रहे हैं, आप आइए और आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए, उसके बाद जो बचेगा ना वो मेरा भोजन है। तो भगवान इस तरह से नेत्र बंद किए और पीने लगे, तो पीते पीते जब उसके प्राण वायु को भी पीने लगे तब उसे उसके मर्म स्पर्श हृदय में बड़ा कष्ट हुआ और अपनी पूरी ताकत लगा करके छोड़ाने लगे, नहीं छोड़ पाए। आचार्य लोग कहते हैं भगवान ने कह दिया कि हम थोड़े तुमको पकड़ने गए थे, हम मथुरा गए होते और तुमको तुम्हारा स्तन पकड़ते, मथुरा से तुम आई हो और आ करके भी नंद भवन में नहीं आया होता, नंद भवन में भी आया होता तो मुझे उठाया नहीं होता, उठाया भी होता तो पिलाया नहीं होता, परंतु जब पिला रही हो तो मेरा एक स्वभाव है कि मैं जल्दी जिस किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार किसी को पकड़ लिया तो जीवन में वो छूटना भी चाहे तो छोड़ता नहीं, ये मेरा स्वभाव। भगवान ने इस तरह से मानो मन ही मन कहा कि हम केवल पकड़ना जानते हैं, छोड़ना तो जानते ही नहीं। बंधुओं, इस तरह का एक बहुत सुंदर प्यार चैतन्य चरितामृत में है। चैतन्य महाप्रभु का एक पार्षद था, वो बौद्धों के धन के लोभ में और स्त्री के लोभ में चैतन्य महाप्रभु से अलग हो गया और चैतन्य महाप्रभु गए जहां वो उसको छिपाए थे लोग। लोगों ने कह दिया क्या ये साधु फकीर बने हो, भजन कर रहे हो, देखो हमारे पास कितनी सुंदर लड़कियां हैं, कितना सुंदर धन है, ये भोग करो, ऐश करो, आराम करो, क्या ये बाबा जी लोगों के पीछे नाचते गाते फिरते। तो आर्य सरल विप्रेर बुद्धि नष्ट कैला चैतन्य चरितामृत, स्त्री धन देखाइया तारे लोभ जन्माइल, स्त्री देखा करके और धन देखा कर उसको लोभ उत्पन्न किया और आर्य सरल विप्रेर बुद्धि नाश कैला, बुद्धि का नाश करने के लिए ये दो बहुत पर्याप्त है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने वाले की बुद्धि नष्ट हो गई और निर्णय लिया कि अब नहीं जाना है चैतन्य महाप्रभु के साथ, और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे हमारे सेवक को कहाँ छुपा दिए, कहाँ है, बोले पता नहीं कहाँ चला गया। और चैतन्य महाप्रभु ने जाकर उसके बाल को पकड़ा, चूंकि महावदान्य है, जो भागना चाहता है एक बार पकड़े हैं तो भगवान उसको कभी छोड़ते नहीं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जाकर उसके बाल को पकड़े और पकड़कर खींचते हुए ले आए, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सेई प्रभु धन्य जेना छाड़े निज जन, वास्तव में वही भगवान वही प्रभु धन्य है, यदि भक्त बनकर छोड़ना भी चाहे तो भगवान उसको नहीं छोड़ते हैं। और सेई भक्त धन्य जेना छाड़े प्रभु चरण, और वही भक्त धन्य है जो किसी परिस्थिति में भगवान के चरणों को नहीं छोड़ता। भक्त का धर्म क्या है, वो किसी परिस्थिति में भगवान को भूले नहीं, भगवान के चरणों को छोड़े नहीं। और भगवान का धर्म क्या है, बोले किसी परिस्थिति में पढ़कर भक्त यदि छोड़ दिया तो वो भगवान अपने भक्त को कभी न छो, ये भगवान का धर्म। सेई प्रभु धन्य जेना छाड़े निज जन, सेई भक्त धन्य जेना छाड़े प्रभु चरण। इस तरह से भगवान ने कहा कि हम छोड़ना नहीं जानते, पकड़ना ही जानते हैं। अब मेरा तुम्हारा स्वभाव है पकड़ाना जानती हो तो हमारा स्वभाव है, और इसमें मेरा क्या दोष है, मैं बच्चा हूँ, तुमने दूध स्तन दिखाया पीने के लिए दिया तो मैं पी रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अंत में वह अपने स्वरूप में होकर के 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी हो गई। हरीश्वरी जी कहते हैं भगवान जिसका स्पर्श कर दें वह कब तक अपना रूप छिपाएगा, वह अपने स्वरूप में अपने स्वभाव में आ ही जाता है। जीव पाव निज सहज स्वरूप, भगवान का जो भजन करने लगे भगवान के संपर्क में आ जाए तो वह जीव अपने स्वरूप में आ जाता है। मुक्ति रहित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, विशेष स्थिति हो जाती है उसको। इस तरह से अपने स्वरूप में हो गई 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी और भगवान उतना ही छोटे स्वरूप से अभी भी उसका स्तन पी रहे। संतों का विचार है कि कंस का एक बगीचा था, इतना बड़ा लाश जलाने के लिए कहीं ना कहीं तो लकड़ी की भी आवश्यकता थी। 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा लाश यदि मिल जाए तो जलाने के लिए बहुत लकड़ी चाहिए, और यदि नहीं जली तो बहुत बड़ा दुर्गंध होगा। तो भगवान ने कहा इतने कहाँ से लकड़ी काटेंगे, इसलिए कंस का एक बगीचा था उसी बगीचे पर गिरा दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बगीचे में पेड़ की हालत क्या हो गई कि चूर्णया मास राजेंद्र, जिस समय पूतना उन पेड़ों के ऊपर गिरी तो बिल्कुल पंच सकार चूर्ण हो गया, आटे की तरह बिल्कुल महीन हो गया। और ये सब घटना हो गई तब नंद बाबा पहुंचे। गोपीजन अपने रक्षा की, अपने भय का परवाह किए बिना पूतना के उतने विशाल शरीर के ऊपर चढ़ करके ले आई, बहुत प्रकार से उनकी रक्षा की। नंद बाबा आए, सबसे पहले उन्होंने अपने पुत्र हरि को, परम मनोहर श्याम को देखा, लाला को, कन्हैया को देखा और गोद में उठा लिया। और गोपीजन देखने लगी कि कहीं उस राक्षसी ने एक दो नाखून तो नहीं मार दिया है, तो कहीं एलर्जी हो जाए, इसलिए गोमूत्र से स्नान कराए। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरजसार्वकम्, गाय के चरण का रज लगाया, फिर गोबर से स्नान किया कि किसी प्रकार का वो नक्श छत विक्षत हो गया होगा तो वो ठीक हो जाएगी। इस प्रकार से पूतना के शरीर को ब्रजवासी नंद बाबा ने हजारों हजारों गोपों को कुल्हाड़ी दिया, और कुल्हाड़ी से काट काट के परशु भी छित्वा, परशु से छिन्न भिन्न करके छोटे छोटे टुकड़े करके उसके शरीर को जलाया गया। बंधुएं, एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ ब्रजवासियों के लिए, जब उसका शरीर जल रहा था तो उस समय उसके शरीर से जो धुआं निकला तो बहुत बड़ी पापिन थी, जैसा आप अगले श्लोक में सुनेंगे। पूतना कंसेना प्रहिता, एक तो कंस के द्वारा भेजी गई, एक दूसरा परिचय दे रहे हैं पूतना। पूत का अर्थ होता है पवित्र, और संस्कृत में न माने होता है नयति, ले जाना। पवित्र पवित्र बच्चों को, निर्देश निर्दोष छोटे छोटे बच्चों को उठा ले जाते, और क्या करती थी, बोले बाल घातिनी, बड़ा हो कोई शत्रुता हो द्वेष हो मारे तो अलग बात है, परंतु ये छोटे छोटे नन्हे शिशु क्या दोष, ऐसे बच्चों को ले जाकर मार देती थी। और बंधुओं, मारती भी बड़ी बेरहमी से, हाँ, बड़ी निर्दयता से मारती थी, मार करके काट कर मांस नहीं खाती थी। राक्षसी, आगे वर्णन है, रुधिरासना, जैसे आप गन्ना को देखते हैं ना, मशीन में दो चक्कों के बीच में पीसते हैं तो जूस निकलता है, ऐसे सुंदर सुंदर बच्चों को जीवित उन दो पट्टों के बीच में पीस करके और जूस बनाकर पीती थी, इतनी खतरनाक राक्षसी। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, इतनी खतरनाक असुर राक्षसी भगवान को मारने के लिए गई है, जहर लेकर के गई है और मारने की नियत से गई है, राक्षसी गई है, परंतु भगवान ने क्या किया, बोले ले भे गतिम, गति प्रदान कर। क्या गति प्रदान की, बोले ले भे गतिम धातृ उचितम ततन्य कमवा दयालु शरणम ब्रजेम। उसे क्या बनाया, मान लीजिए कोई आपके फ्लैट में बंदूक लेकर गोली तान करके और मारने के लिए जाए, और आप कहिए आइए आइए आपका स्वागत है, यह आपका घर है, विराजिए। इस तरह से परम दुष्टा, सबसे बड़ी निर्दय आसुरी शक्ति की चरम सीमा ये गई। इस कथानक में, इस श्लोक, इस प्रसंग में हमारे आचार्य कहते हैं कि राक्षसी पूतना ने अपने दुष्टता की सीमा दिखा दी। इतने बड़े दुष्ट भी होते हैं तो भगवान ने भी इस लीला में अपने करुणा की सीमा दिखा दी। बोले भगवान भी इतने कृपालु होते हैं। भगवान ने दिखा दी, क्या किया? बोले लेभे गतिम धात्री, जो गति माता यशोदा को देते हैं भगवान, वो गति अपने घर में ऐसे मारने वाली को मां बना ली। तो भागवतकार कहते हैं, मैत्रेय जी तृतीय स्कंद में प्रसंग है, उद्धव जी स्मरण करते हैं, कमुआ दयालु, संसार में है ऐसा कोई दयालु कि कोई किसी को जान से मारने जाए और वो उसे कहे कि आइए आप हमारे घर में रहिए और आप, ये आपका घर है? है कोई देवी देवता? अरे ब्रह्मा जी को उनके पुत्र ने प्रणाम नहीं किया तो गुस्से में लाल हो गए, हाँ भृगु महाराज ने, और भगवान शिव केवल आलिंगन में मिलने नहीं गए तो उठाकर त्रिशूल मारने के लिए दौड़े। इस तरह से कोई जहर लेकर के जाए देने के लिए, मारने के लिए जाए, राक्षसी जाए, तो कोई अपने घर में स्वागत करेगा? और वह भी परम पूज्या, माता का पद तो नहीं दे सकते। तो उद्धव जी कहते हैं, कमुआ दयालु, आप विचार करो, संसार में ऐसा कोई दया वाला है जिसकी शरण में हम जाएं और राक्षसी पर भी, जहर देने वाली पर भी, और मारने की नियत वाली पर भी इतनी कृपा करे? हमारे एक आचार्य ने बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा की है, वो कहते हैं कि राक्षसी गई थी और कोई एक साधारण कुल का व्यक्ति जाए तब भगवान कितनी कृपा करेंगे, और उसमें भी कोई भक्त बनकर जाए तब कितनी कृपा करेंगे, उस भक्त में भी प्रेमी भक्त बन करके कोई जाए तब कितनी कृपा करेंगे। जब राक्षसी को ये गति दे सकते हैं तब उत्तरोत्तर श्रेष्ठ, हाँ ग्रेजुअल जो ऊंचे ऊंचे लोग हैं उनके, उनको भगवान क्या देंगे? और लेकर क्या गई थी? जहर। बोले जहर देने वाले को जब मां बना लेते हैं तो बिना मन का न्यूट्रल होकर के कोई उनको कुछ दे दिया तो क्या बनाएंगे? और आदर से कोई दे दिया कि आपको ये दे रहा हूं, आप मेरे हैं, तो क्या गति देंगे? और उसके ऊपर यदि प्रेम से भगवान को कोई कुछ देता है तब उसे क्या देंगे? जहर देने पर इतनी कृपा करते हैं। तो जो सुंदर ठाकुर जी के चरणों में अन्न धन तन प्रसाद दे रहा है उसको क्या गति प्रदान करेंगे? बोले महाराज, उसको तो अपनी माँ बनाया, परंतु इस तरह से जो भक्त भगवान को प्रेम से देते हैं तो भगवान के पास दूसरा कुछ नहीं होता है, भगवान अपने आप को ही उस भक्त को दे देते हैं, यही भगवान का दान, आत्मदा हरि। तो ऐसे पूतना चली गई है, नंद बाबा अभी मथुरा में हैं और पूतना गई है, सारा उत्पात हो चुका है, और इधर अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए नंद बाबा हरिम जगाम शरणम, भगवान श्री हरि के शरण में वहीं से मन ही मन गए हैं, अथवा अपने परम मनोहर पुत्र का चिंतन करते हुए कि हमारे पुत्र का कहीं अनिष्ट न हो, इस भाव से युक्त होकर के पूरे रास्ते भर नंद बाबा गोकुल में पहुंचे हैं। और ये दृश्य देखा कि इतनी विशाल राक्षसी और इतना छोटा सा कृष्ण फिर भी बच गया, नंद बाबा प्रेमाश्रु से अपने लाला को, कृष्ण को का सिर सूंघने लगे और सब जगह देखने लगे कहीं छत बिछत तो नहीं हुआ है। और इस प्रकार प्रेम से परिप्लुत होकर के नंद बाबा ने कहा कि सबसे पहले ये 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी लाश को खत्म करो, जलाओ, नहीं तो क्या फैल जाएगी, महामारी फैलेगी इसके दुर्गंध से। लेकिन जब उसको टुकड़े टुकड़े काटा गया, अब बंधुओं एक सीधा एक शरीर में 18 किलोमीटर जलाया भी नहीं जा सकता, इसलिए नंद बाबा ने हजारों कुल्हाड़ी दिया और कहा कि गोपो इसका टुकड़ा टुकड़ा करके और अलग अलग जलाओ। एक बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया, जिस समय पूतना का शरीर जलाया गया तो उसके शरीर से दुर्गंध नहीं निकला, बहुत सुंदर दिव्य अगुरु का सुगंध निकलने लगा उससे, और सारे ब्रजवासी जो आसपास में थे वो आश्चर्य में हो गए, राक्षसी के शरीर से इतना बड़ा सुगंध, ये कैसे हो सकता है। महाराज जानते हैं अन्य जितने भी 84 लाख योनि हैं उनमें अन्य शरीरों को जलाया नहीं जाता। जलाने के लिए क्या है, बोले ये मनुष्य का शरीर ही जलाया जाता है। क्या कारण है, आप देखते हैं ना, पशु भी मरते हैं, पक्षी भी मरते हैं, कीड़े मकोड़े मरते हैं, कोई भी जीव जंतु मरे जलाया नहीं जाता है, मनुष्य को ही क्यों जलाया जाता है। कारण यह है, इसलिए मनुष्य को जलाया जाता है क्योंकि मनुष्य के शरीर में बहुत बड़ा दुर्गंध है, और यह दुर्गंध ऐसा है कि छोड़ दिया जाए तो आसपास के लोग पागल हो जाएंगे, बहुत भारी रोग हो जाएगा। दूसरे पशु मरेंगे तो उनके शरीर में भी दुर्गंध है लेकिन इतना नहीं। बोले महाराज इस शरीर में इतना दुर्गंध होने का कारण क्या है, किस कारण से मनुष्य के शरीर में ही दुर्गंध होता है, क्यों जलाया जाता है। तो शास्त्र उत्तर देता है कि इसलिए जलाया जाता है कि जिस शरीर में जितनी ज्यादा वासना होती है, वासना समझते ना, कामना, उसके शरीर से उतना ही दुर्गंध निकलता है, और पशु कीड़े मकोड़े या अन्य जितने भी शरीरधारी जीव हैं उनमें इतनी वासना नहीं है जितना मनुष्य में, इसलिए उनमें इतना दुर्गंध भी नहीं। मनुष्य में अनंत वासना है, अनंत कामना है, और इसीलिए उस वासना के कारण उस शरीर में वास है, दुर्गंध है, और यदि उस वास को नहीं जलाया गया तो आसपास के लोगों में महामारी फैल जाएगी। इसलिए हमारी बहुत सुंदर परंपरा है, सनातन धर्म की परंपरा, कि इस शरीर को जला देना चाहिए। दूसरे धर्म जैसा नहीं कि मरे हैं तो भी जगह छेक रहे हैं और मरने के बाद भी तीन हाथ जगह छेक रहे हैं। तो आज इतनी बड़ी संख्या है, धीरे धीरे जगह छेकते छेकते मरने वालों के लिए, मर के भी मरने के बाद भी उतना, हमारी परंपरा है कि तीन हाथ जगह पर लाखों लोग वहां रह जाते हैं, है ना, इतनी सुंदर परंपरा है। परंतु अन्य धर्मों में परंपरा है कि उनके लिए तीन हाथ मरने के बाद भी रिजर्व चाहिए, और इसी तरह से रिजर्व करते करते एक दिन पूरा श्मशान रहने के लिए नहीं रह जाएगा, सारा धरती ही श्मशान हो जाएगा, सब जगह वो सोए रहेंगे, मनुष्य को रहने और खाने का भी जगह नहीं मिले। और इस बॉम्बे में तो वैसे भी नहीं है, जमीन किसको मिलता है, सब लोग आकाश में रहते हैं, आकाश की कीमत है यहाँ, भगवान 5 तत्व बनाए हैं उसमें आकाश में लोग रहते हैं, धरती में तो बहुत कम लोगों को रहने को मिलता। तो कितनी सुंदर परंपरा है, इस जो दूषित शरीर है जिसके अंदर वासना है कामना है, इस शरीर को जला दिया जाए। और शास्त्र कहता है इस शरीर को जब जला दिया जाता है तो शरीर के साथ ही कुछ आत्मा के साथ जो कर्म का फल जाता है वो भी जल जाता है, कुछ आत्मा का भी कर्म फल जल जाता है शरीर के साथ, ये भी एक लाभ है। और दूसरा लाभ ये है कि वास नहीं होता है, दुर्गंध नहीं फैलता है। तो सबसे अधिक वासना कामना के कारण सबसे अधिक दुर्गंध है इसमें, इसलिए मनुष्य शरीर को जलाया जाता है। अब आप विचार कीजिए उस पूतना के अंदर कितनी गलत वासना थी, तो उसके शरीर से निकले धुआं में दुर्गंध होना चाहिए, तो सुगंध क्यों हो गया। तब सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं, परीक्षित, जिनके चरणों के चरण कमल के एक अंगूठे, और अंगूठे भी नहीं, नख से जल निकला है, और वह जल गंगा जल तीनों लोगों को पवित्र करता है, वह अंगूठा नहीं, वह नख नहीं, वह अंगूठा नहीं, भगवान नख से सिख तक जिस पूतना के देह पर हैं प्ले ग्राउंड बना करके खेले हैं, क्या आज भी वो पूतना पापी ही रह गई। जिसके चरणों के चरण भी नहीं, नख नख भी नहीं, नख का जल तीनों लोक को पवित्र करने का सामर्थ्य रखता है, ऐसे भगवान अपने संपूर्ण अंगों से जिस पूतना के श्री विग्रह पर खेले हैं, खेले ही नहीं हैं, उसके भीतर से दूध का पान किए हैं, भला इतनी पवित्र पूतना, पूत पूत मतलब पवित्र, क्या अभी भी पापी ही रह गई? अर्थात परम पवित्र हो गई है, इसलिए उसके शरीर से दुर्गंध नहीं अपितु दिव्य सुंदर अगुरु कमल केसर इत्यादि का सुगंध निकल रहा है। और इस तरह से सुगंध का अवघ्राण करके शुंग करके सारे ब्रजवासी आनंद में विभोर हो गए। और इस तरह से पूतना जैसी स्त्री भी, स्त्री थी, राक्षसी थी, जहर लेकर गई थी, मारने के लिए गई थी, फिर भी भगवान ने उस पर इतनी कृपा की। ये भगवान की करुणा की लीला है। भगवान इस तरह से अपने लीला में ये दिखाते हैं कि कोई किसी भी भाव से, आप गृहस्थ हैं कोई बात नहीं, आप सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, भगवान ये नहीं देखते। अरे जब राक्षसी नहीं देखते हैं तो और क्या देखें, जब जहर नहीं देखते हैं तो और क्या देखें। इतने गलत स्वभाव को भगवान नहीं देखते हैं, भगवान केवल एक ही चीज देखते हैं कि किसी भी भाव से ये जीव हमारे चरणों में आकर शरण हो जाए, हमारे पास आ जाए, हमारे धाम में आ जाए, हमारे मंदिर में आ जाए। एक आचार्य कहते हैं पूतना ने क्या सुकृत किया था, क्यों भगवान ने कृपा की? बोले पूतना में और कोई गुण नहीं था, केवल दो गुण था। पूतना में क्या गुण था? दो गुण था। एक गुण तो ये था कि वो स्वयं आई थी मथुरा से, कहां पर? गोकुल धाम में, महावन में, पहला गुण। और दूसरा गुण क्या था? बोले वो भक्त का वेश बना करके आई थी। कुछ लोग कहते हैं ना ये तिलक लगाने से और कंठी और जप करने से क्या होता है, बोले महाराज पूतना भीतर से इतनी खतरनाक थी परंतु ऊपर से गोपी बन करके आई थी, और इस तरह से केवल गोपी ड्रेस देख करके भगवान ने उसको मां बना लिया। भीतर सब खतरनाक था परंतु बाहर के ड्रेस को भगवान ने देखा, ओहो इतना सुंदर तिलक की है, इतना सुंदर लहंगा है, इतना सुंदर फरिया है, इतना सुंदर माला पहन करके आई है, ये तो हमारे ब्रजवासी का ड्रेस बनाई है, इसलिए ये कृपा के योग्य है। भगवान ने ये नहीं देखते हैं कि ये कितना खराब भक्त है कि अच्छा है, केवल इतना ही देखते हैं कि यदि तिलक और जप किया है तो ये मेरा है, भगवान इतना ही देखते। तो ये गुण देखा भगवान ने कि ये मेरे भक्त का रूप बनाकर आई है और दूसरे गोकुल में आई, इसलिए इस पर कृपा करनी चाहिए। तो भगवान ने अपनी कृपा का प्रदर्शन किया। आगे ये कथा विस्तार से इस मंच से भक्त लोग करेंगे, मैं यहीं पर विराम करता हूँ, समय का अतिक्रमण हो गया। तो इस प्रकार से नंद महाराज गोकुल में लौटे हैं और अपने पुत्र को, स्वयं भगवान को, कृष्ण को सुरक्षित पाकर के अति प्रसन्न हुए और अनेक प्रकार से भगवान के की रक्षा की गई ब्रज में। सारे जगत की रक्षा भगवान करते हैं और भगवान की रक्षा गोपीजनों ने किया, और किस चीज से किया? बोले इन्हीं भगवान के नाम से भगवान की रक्षा। गोबर का तिलक कर रही हैं तो पढ़ रही हैं श्री केशवाय नमः, और उन गोपियों को ये पता नहीं है कि यही केशव है, इन्हीं को प्रणाम करना है। इन्हीं का मंत्र है जिनकी रक्षा कर रहे हैं। तो भगवान और गोपी ने, ब्रजवासियों ने दिखाया कि भगवान सबकी रक्षा करते हैं, परंतु भगवान पर कोई संकट आ जाए, भगवान पर कोई विपत्ति आ जाए, राक्षसी का स्पर्श हो जाए, तो उनकी रक्षा उनका नाम करता है।
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे।
हरे
कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम
तो हम यदि भगवान के नाम संकीर्तन के साथ रहेंगे
तो भगवान की रक्षा करता है तो हमारी रक्षा करे, इसमें क्या आश्चर्य है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि चाहे हृदय में जो भी भाव हो, अच्छे हो बुरे हो, गृहस्थ हो, किसी भी भाव से ठाकुर जी के पास आना चाहिए। भगवान के पास आएंगे तो भगवान कृपा करते हैं। और रक्षा चाहिए तो नंद बाबा भी हरि शरण में गए हैं, हरि नाम के शरण में गए हैं, और हम भक्तों के लिए भी हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी गुरु महाराज और अन्य पूर्ववर्ती आचार्य एक ही उपदेश कहते हैं कि यदि भगवान के नाम के शरण में रहोगे तो वैसे ही रक्षा होगी जैसे साक्षात भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो इसी के साथ विराम करते हैं, फिर एक बार हरिनाम, वर्ल्ड हरिनाम वीक है, तो भगवान के नाम से ही हमारी रक्षा हो सकती है। और हम अपने हृदय पर हाथ रख के देखें तो हम सब लोग ये चाहते हैं कि हमारी रक्षा हो, हमारा खतरा ना हो। खतरा से बचना है बंधुओं तो भगवान के नाम का स्मरण करें।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम।
धन्यवाद महाप्रसाद की
जय।